Watanabe at Mike Wahakanyan. सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्रव्येण गिरिद्विजान् उपहृत्य बलीं संज्ञात् आद्रतायव संगवां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम्। ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद 24वां अध्याय जिसका शीर्षक है गोवर्धन पूजा, इसका 32 और 33वां श्लोक है। जहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए गोवर्धन पूजा का वर्णन कर रहे हैं। अनुवाद, तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटे दी। उन्होंने गांवों को भी घास दिया। तत्पश्चात गौओं, सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। तात्पर्य, वृंदावन वासी एकमात्र भगवान कृष्ण के भक्त थे, यही उनके जीवन का सार था। भगवान के नित्य संगी होने के कारण न तो उन्हें इंद्र या किसी अनुष्ठान यज्ञ से कोई सरोकार था, न ही वे कृष्ण द्वारा कहे गए यांत्रिक सांख्य दर्शन में रुचि रखते थे। वे तो कृष्ण से केवल प्रेम करते थे और प्रगाढ़ स्नेहवश ही उन्होंने जैसा कृष्ण द्वारा कहा गया वैसा ही किया। उनकी यह सरल प्रेम मानसिकता कोई संकीर्ण हृदयता या अज्ञान न थी, क्योंकि वे परब्रह्म के प्रति अनुरक्त थे, जिनमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस तरह वृंदावन वासियों ने निरंतर सभी सत्यों से आधारभूत सर्वोच्च अनिवार्य सत्य तथा स्वयं श्री कृष्ण का अनुभव किया, जो समस्त कारणों के कारण तथा इस जगत का पालन करने वाले हैं। वृंदावन वासी उन परब्रह्म की प्रेमा भक्ति से अभिभूत रहते थे, अतएव वे समस्त जीवित प्राणियों में परम भाग्यशाली, परम बुद्धिमान तथा परम व्यावहारिक थे। हरे कृष्ण। तो आज हम उस मंगलमय गोवर्धन पूजा का जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ब्रजवासियों को सिखाया और बतलाया और कराया, उनके चरण चिन्ह में चलते हुए आज वो मना रहे हैं। इस गोवर्धन लीला द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कई कार्यों को किया, पर दो प्रमुख चीज हमें सिखलाया ब्रजवासियों के द्वारा अपने पार्षद भक्तों के द्वारा, और वो कि किस प्रकार अगर हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो फिर अलग से, उनसे अलग समझकर जितने सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हैं जितने भी हैं, उनको अलग से शरण जाने की कोई जरूरत नहीं है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणम अच्युतेज। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से धड़, डाली, पत्ता, फूल, फल सब में अपने आप पानी चला जाता है, अलग से जब पानी डालने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार पेट में खाद्य डाल देने से अलग से सारे अंगांगों को दष्ट पुष्ट करने के लिए खाना डालना जरूरत नहीं है, इसी तरह से अगर हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता जितने भी हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः, इन सब की अलग से शरणागत होके उन सब अलग लोग अलग देवताओं को अलग से भगवान से अभिन्न समझकर पूजने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप सब प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर ये सब करते हुए भगवान को प्रसन्न नहीं किए, श्रमे वही केवलम, तो फिर वो केवल श्रम मात्र है, जीवन की परिपूर्णता जो है वो प्राप्त नहीं होगी। भगवत धाम जाना, भौतिक संसार से परे जाना, ये बात साफ साफ साबित कर दी इस गोवर्धन पूजा के द्वारा। और दूसरी बात भगवान ने साफ साफ साबित किया कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे सरल तरीका है उनके भक्तों को प्रसन्न करो। और गोवर्धन जो है वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जो है सारे भक्तों का सेवा करता है, न केवल भगवान कृष्ण और राम की बल्कि सारे भक्तों की वो सेवा करता है। कैसे सेवा करता है? पूर्ण रूप से उन्हें तृप्त करता है, अपने शरीर से, अपने सर्वस्व से वो अपने भक्तों को प्रसन्न करता है, भगवान और उनके भक्तों की सेवा करता है, इसीलिए सबसे बड़ा भक्त है वो। और जब उनकी पूजा करेंगे, मद भक्ता पूजा अभ्यधिका, भगवान 11वें स्कंद में उद्धव को कहते हैं कि मद भक्ता पूजा अभ्यधिका, मेरे भक्त की पूजा जो है वो मेरी पूजा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरे भक्त की को प्रसन्न करने से मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता हूं। आदि पुराण में भगवान कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं तो वो मेरा भक्त नहीं है अर्जुन, जो कहता है कि मैं भक्तों का भक्त हूं वो मेरा भक्त है। तो ये बात साफ साफ इस गोवर्धन लीला द्वारा भगवान ने साफ साफ साबित किए, ये दो बात। इसके अलावा इंद्र को अहंकार हो गया था, वो भी चोर करना था, बहुत सारे कार्य एक साथ निभा लेते हैं भगवान। तो गोवर्धन की महिमा क्या है? गोवर्धन जो है, क्यों हरिदास वर्य गोपियां भागवत में जब भगवान की गुणगान करती है तो गोवर्धन के गुणगान में एक सुंदर श्लोक कहती है, कहती है हंतायमद्री अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोर तयोर यत पानीय सूय वस कंदर कंद मूलई। गोवर्धन की महिमा गा रही है, कहती है हंताय मद्री अबला हरिदास वर्यो, हंत हंत मतलब ओ, जैसा हम लोग बहुत खुश हो जाते बोलते हैं वाह, हंत अयम अद्री, ये पहाड़ जो है गोवर्धन पर्वत, हंताय मद्री अबला, हे सखिया गोपियां, एक गोपी दूसरे गोपियों से कह रही है हंताय मद्री अबला हरिदास वर्य, हरिदासों में भगवान के बहुत सारे दास हुए, हरिदास वर्य श्रेष्ठ है। भागवत में तीन लोगों को हरिदास बताया गया है, महाराज युधिष्ठिर को, उद्धव को और गोवर्धन को। महाराज युधिष्ठिर को जब उन्होंने यज्ञ किया और सब भगवान को प्रसन्न किया, जितने सारे लोग आए थे उन सबको अच्छी तरह से प्रसन्न किया, उनको हरिदास बताया गया और उद्धव जी को भी हरिदास बताया गया है। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोवर्धन को हरिदास वर्य, ये तीनों में श्रेष्ठ बताया गया है, हरिदास वर्य सबसे श्रेष्ठ। सुहंताय मद्री अबला हरिदास वर्य, क्यों क्यों हरिदास वर्य? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, इस गोवर्धन को राम कृष्ण चरण, बलराम और कृष्ण के चरण हमेशा इस गोवर्धन पर पड़ते रहते थे। स्पर्श प्रमोद, वो प्रेम से गदगद हो जाता था गोवर्धन भगवान के चरण के स्पर्श होने से, प्रेम पूर्वक। उनके जैसा जब किसी को आनंद हो जाता है तो रोम 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 खड़े हो जाते, तो गोवर्धन को रोम कैसे खड़े होता था? सारे घास खड़े हो जाते, लंबे लंबे घास। प्रेम से विवल हो जाता तो आदमी को लगातार आंसू बहती है, गोवर्धन की आंसू क्या बहती है? सुंदर सरोवर, क्या बोलते हैं, झरने वहां से धबधबा। और शरीर गदगद, मतलब जो पत्थर है वो भी पिघलने लगता था। इस तरह से यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, फिर कहती हैं मानं तनोति सहगो गणयो तयोर्य, मानं तनोति, बड़े आदर पूर्वक। न केवल भगवान राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण की सेवा करते थे, बल्कि गोगणयो हो, ग्वाल बाल, गाय, बछड़े, सबको वो प्रसन्न करती थी, सबकी सेवा करती थी। मानं तनोति सहगो गणयोर तदो तयोयत, कैसे कैसे सेवा करती थी? ऐसे कि पानीय सूय वस कंदर कंद मूले, पानीय सुंदर झरने गोवर्धन में बहती थी। 5000 साल पहले गोवर्धन बहुत ही विशाल था, आसमान से छूने वाले, बादलों को स्पर्श करने वाले, बहुत ही विशाल था। अभी भगवान के विरह में हर एक दिन एक एक जो क्या बोलते राई का दाना उतना कम होते जा रहा है हर एक दिन भगवान के विरह में, और कलयुग में अंत तक गोवर्धन अप्रकट होकर वापस भगवत धाम गोलोक वृंदावन चला जाएगा। इससे पहले आप लोग सब लोग जाके एक बार परिक्रमा करके आ जाइए। तो पानीय बहुत सुंदर झरनों के द्वारा कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल गायों के साथ बछड़ों के साथ आते थे और उस शीतल पानी को पीते थे, मुंह धोते थे, चरण धोते थे, गायों को पिलाते थे, और बहुत ही मतलब फ्रेश हो जाते थे। पानीय सूयवस और सुंदर घास, इतने सुंदर घास थे ये आराम से सोने के लिए अच्छा था एकदम रामकृष्ण के लिए, और गायों के लिए इतने सुंदर घास थे एकदम फ्रेश और एकदम जूसी, एकदम उसमें क्या बोलते हैं मुलायम और बहुत ही अमृत जैसे दूध वाले, ऐसे वो घास गायों को और बछड़ों को देते थे। तो गाय भी प्रसन्न, ग्वाल बाल भी प्रसन्न, भगवान श्री बलराम जी और कृष्ण सब प्रसन्न हो जाते। पानीय सूयवस कंदर, कंदर यानी सुंदर सुंदर गुफाएं थी गोवर्धन में, और उस गुफाओं में जब बहुत धूप होता था तो वहां छिपने के लिए, खेलने के लिए, विश्राम करने के लिए जगह देते थे। और गुफा का एक खासियत है, हम लोग कुछ साल पहले शबरी के गुफा में गए थे, ये हनुमान जी का जगह कौन सा, हम्पी में, हम्पी में वो जगह है जहां शबरी का गुफा है, और वहां उस गुफा में आपने देखा है, आपने करीब अनुभव किया होगा, ठंडी के दिनों में आप गुफा के अंदर जाएंगे तो एकदम थोड़ा गर्मी लगता है, अच्छा लगता है, और गर्मी के दिनों अगर गुफा में जाएंगे तो एकदम ठंडा वातावरण रहता है। आप में से कोई गया हो तो देखिए, ठंडी के दिनों में गुफा के अंदर एकदम गर्मी अच्छा लगता है, मानो हीटर चालू किया हो, और गर्मी के दिनों में जाने में लगेंगे थोड़ा एसी लगाया है। पानी सूय वस कंदर कंदमूल ही, और उनको खाने के लिए कंदमूल ही, बहुत सारे कंदमूल मिलते थे, आम का रस मिलता था, पीलू का रस मिलता था, पीलू नाम का एक फ्रूट होता है, फल होता है, बहुत सुंदर जूस होता है उसमें, और उसके बाद हनी क्या बोलते हैं मद मधु, इस तरह से ये सब आस्वादन करने को, उनको खाने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, फ्रेश होने के लिए, सब चीज के लिए सेवा का एकदम तैयार थे। पानी सूय व सकंदर कंद मोलई, तो इस तरह से न केवल भगवान को प्रसन्न करना बल्कि भगवान के भक्तों को भी प्रसन्न करके उनकी जितनी सारी जरूरतें हैं उनको अच्छी तरह से प्रसन्नता पूर्वक उनको सेवा करके खुश करना, इसीलिए गोवर्धन को हरिदास वर्य बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को निश्चय किया था कि मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा, उनसे मिलूंगा नहीं, क्योंकि वो राजा है और एक सन्यासी को राजा से नहीं मिलने का। पर जब महाप्रभु ने सुना रामानंद राय से और दूसरे से कि न केवल वो चैतन्य महाप्रभु के लिए एक सुंदर जगह रहने के लिए व्यवस्थित किए, गंभीरा नाम का जगह जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु को एक ऐसा एकांत स्थान चाहिए था और साथ साथ में जगन्नाथ मंदिर के पास होना चाहिए था, हर रोज दर्शन के लिए जाते थे, तो उन्होंने एक अच्छा जगह ढूंढ के वैयक्तिक रूप से सोचा कि यही जगह सबसे श्रेष्ठ होगा और उनको रहने के लिए एक अच्छा जगह दिया। न केवल इतना बल्कि बंगाल से हर साल चार महीने के लिए चतुर्मास के दौरान भक्तगण आते थे जगन्नाथपुरी, वहां चैतन्य महाप्रभु से मिलने, रथ यात्रा में भाग लेने और दूसरे उत्सवों में भाग लेने। उस समय वैयक्तिक रूप से महाराज प्रताप रुद्र ये इंतजाम करते थे कि सारे भक्तों के लिए रहने का स्थान, प्रसाद लेने के लिए एकदम अच्छा इंतजाम हो और उनकी सारी व्यवस्था, जो कुछ भी उनकी जरूरतें हैं, अच्छी तरह से हो जाए। जब ये देखे तो श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के प्रति बहुत ही अनुकंपा और दया देने का निश्चय किया, कृपा देने का निश्चय किया। यही चीज जैसे मैंने बताया भगवान ने अर्जुन को बताया आदि पुराण में, जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, क्योंकि भगवान के हृदय में भक्त निवास करते हैं, और भक्तों को प्रसन्न करना, उनकी जरूरतों को देखना रहने के लिए अनुकूल है। जब प्रभुपाद जी ने मायापुर में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रमुख, मतलब क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स बनाने का निश्चय किया, इससे पहले कि राधा माधव जो बड़ी मूर्ति है आज वहां और अष्टसखी लाने से पहले उन्होंने बड़ा बिल्डिंग बनाया भक्तों के लिए। पहले बोले पाश्चात्य देश से इतने सारे भक्त आने वाले हैं, उनको यहां क्या घास में सोएंगे, कीचड़ है यहां तो, सिर्फ क्या बोलते हैं खेत है इधर बंगाल में, और इतने इतने बड़े बड़े मच्छर हैं आज भी। तो बोले भक्तों को रहने के लिए स्थान बनाओ, बाद में राधा माधव अष्टसखी को बुलायो, आमंत्रित की, तो भक्तों को प्रसन्न करना। और ये दो चीज भगवान दिखा रहे हैं कि अगर भगवान की शरण गए तो और किसी देवी देवताओं के जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप 33 करोड़ देवी देवताओं सबको आपने प्रसन्न कर दिया। और दूसरी चीज, अगर सही में भगवान को आपको प्रसन्न करना है तो भक्तों की सेवा करो, भक्तों को प्रसन्न करो, भक्तों को आनंद प्रदान करो। और भक्त खुश हैं, भक्त प्रसन्न हैं, तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को प्रसन्न करना बड़ा आसान है, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। भगवान तो षडैश्वर्य पूर्ण है, उनको क्या क्या खिलाओगे, उनके पास कोई कमी नहीं है। पर भक्त जो है अल्प तृप्ति, क्या चाहते हैं बेचारे, चा जो चपाती खिला दो तो खुश हो जाते, वाह बहुत धन्यवाद, बहुत हो गया, क्या चाहिए उनको, जगह थोड़ा बैठने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए इतना प्रसाद एकदम चाहिए। भक्तों को प्रसन्न करना आसान, और भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। साधु हृदयो मह्यम साधु नाम हृदयम तोहम, क्योंकि भगवान भक्त जो है भगवान के हृदय में निवास करते हैं, भक्तों को भगवान को प्रिय है, तो भगवान के हृदय को स्पर्श करना है तो भक्तों को प्रसन्न करो। ये दो चीज इसके द्वारा बताई गई। और गोवर्धन की स्थिति रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में भी बताया है। सबसे पहले बताया कि वैकुंठ कितना महान है, पूरे ब्रह्मांड जो है उससे श्रेष्ठ है वैकुंठ धाम। वैकुंठ विगत कुंठ, जहां कोई चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्लेश नहीं है। पर कहते हैं कि वैकुंठ से भी बड़ा जगह एक है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। मधुपुरी जो मथुरा देश है, ये मथुरा वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। हालांकि भारत के उत्तर भारत में एक छोटा सा एक उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा एक जगह है ये, पर ये हालांकि भारत में है पर ये भारत में नहीं है। ये जैसे दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसीज होते हैं, दूतावास, पर ये दूतावास जो है उस दूतावास में अगर हम बोलेंगे अमेरिकन दूतावास दिल्ली में है, पर भारत का कोई नियम उस दूतावास के अंदर लागू नहीं है, अमेरिका का नियम लागू है। इसी तरह से जो ब्रज भूमि है उसमें भौतिक संसार का नियम लागू नहीं है, बाहरी रूप से लागू होगा, पुलिस वाला आएगा कुछ करके जाएगा उस समय बाहरी रूप से, पर ये जो है दिव्य स्थान है, पूरी ब्रह्मांड की नाश हो जाएगी पर ये ब्रज भूमि जो है वैसी की वैसी रहेगी। तो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ये मथुरापुरी। क्यों? जनितः, भगवान खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण गोलोक वृंदावन से डायरेक्टली आए भगवान श्री कृष्ण ने उस मधुपुरी में जन्म लिया। भगवान के जन्म लेने से वो स्थान जो है वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, उससे भी श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? तत्रापि रासोत्सवात्, वृंदारण्य, वृंदारण्य जो है वृंदावन, ये वृंदावन जो है मथुरा से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहां रासोत्सव, भगवान ने रासलीला की गोपियों के साथ। तत्रापि रासोत्सव, पर कहते हैं कि वृंदावन से भी, वृंदावन में भी एक जगह जो है बहुत श्रेष्ठ है वृंदावन से भी। कौन सा? तत्रापि रासोत्सव, वृंदा उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। गोवर्धन जो है वो वृंदावन में भी सबसे श्रेष्ठ जगह है। इसलिए जनरली वृंदावन जाते हैं कम से कम एक बार गोवर्धन परिक्रमा करके आते हैं लोग। क्यों? उदार पाणी रमणा, भगवान ने डायरेक्टली गोवर्धन को अपनी उंगली से 7 दिन और 7 रात तक उठा के रखा। और न केवल उतना बल्कि भगवान ने खुद गोवर्धन को प्रवेश करके सारे ग्वाल वालों का जो भोग था उसको स्वीकार किया। और इस तरह से पूरे हमेशा के लिए इतिहास में यह बता दिया कि गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसीलिए गोवर्धन शिला को भी अगर हम पूजा करते हैं घर में, गोवर्धन शिला रखना मतलब डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण मूर्ति विग्रह पूजा के बराबर है। प्रभुपाद उसके तात कृष्ण बुक में लिखते हैं, इसीलिए भक्तों को गोवर्धन शिला लाके अगर घर में रखे तो वो विग्रह पूजा के बराबर है। पर ऑफकोर्स ये शिला तब तक हम नहीं ले सकते जब तक कोई अपने आप न कोई ब्रजवासी हमें न दे, उसको जाके पूछना नहीं चाहिए चलो 5 रुपए देता हूं दे देना अपनी स्वेच्छा से कोई दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, नहीं तो 10 साल में खाली हो जाएगा लगता है सब लोग एक एक वहां से अगर गोवर्धन चिल्ला अपने अपने घर में तो तत्रापि वृंदारण्य उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। गोवर्धन क्यों प्रिय है? क्योंकि गोवर्धन ने न केवल इतने भगवान के भक्तों की बहुत अच्छे तरह से प्रेममय प्रसन्नतापूर्वक और बड़े प्रसन्नता देने वाले तरीके में सेवा की है उनकी। दूसरी चीज है, गिरिराज महाराज बता रहे थे कि गोवर्धन में जो भगवान ने गोपियों के साथ लीला की वो और भी अंतरंग लीलाओं में से बहुत एक है, श्रेष्ठ है। वहां भी रासलीला की, भगवान ने रासलीला अलग अलग जगह की पर जो गोवर्धन में हुआ वो बहुत ही अंतरंग लीलाओं में से एक है। और इस तरह से गोवर्धन की महानता पवित्रता श्रेष्ठता बताते हुए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है कि गोवर्धन और गोवर्धन के पास जो राधा कुंड है उसे श्रेष्ठ कोई जगह ही नहीं। इस तरह से उसकी महिमा बताते हुए, गोवर्धन की महिमा बताते हुए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया। तो भगवान ने इस लीला के द्वारा बहुत सारे काम किए, एक तो गोवर्धन की महिमा बताए और ये दिखाए कि कृष्ण को अगर शरणागत होए तो प्रसन्न किए तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे, गायों को ब्राह्मणों को गो ब्राह्मण्य हिताय च और गोवर्धन को आप प्रसन्न करोगे तो डायरेक्टली भगवान को प्रसन्न करोगे। तो ये लीला ऐसी हुई कि एक बार जब भगवान ने द्वार मथुरा के जो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां थी पत्नियों का उद्धार किया, याज्ञिक ब्राह्मण समझ गए कि हमारी पत्नियां हमसे श्रेष्ठ है, हम तो यज्ञ करते रह गए पर यज्ञ पति को हमारी पत्नियों ने प्रसन्न किया और हम तो वहीं के वहीं रह गए, हमारा सिर्फ मुंह काला हुआ यज्ञ करके और कुछ नहीं हुआ। यज्ञ के सामने स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, धुआं आया मुंह काला हो गया, भगवान नहीं मिले और हमारी पत्नियां वहीं से वहीं चले गई, भगवान का दर्शन भी करके आ गई। इस तरह से वो बेचारे समझ गए कि हमारी पत्नियां हमसे श्रेष्ठ है क्योंकि उनको भगवान की खास कृपा मिल गई। तो ये यज्ञ पत्नियों को कृपा देने के बाद भगवान ऐसे ही चलते चलते आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ग्वाल सारे जो द्वारक अपने ब्रजवासी हैं वो लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ इंद्र पूजा कुछ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो नंद महाराज के पास भगवान गए, 7 साल के लड़के, 7 साल का लड़का मतलब कितने उम्र तुम्हारा उम्र क्या है वही की थी 12 खड़े हो जाओ उस तरफ मुड़ो सबको चेहरा दिखाओ अपना, ये 12 साल का लड़का ही बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा 5 साल पहले कैसा था, कैसा था तुम, कितना था दिखाओ सबको बताओ कितना, हाँ इतना था वो। बोलिए 7 साल का लड़का, 7 साल का लड़का भगवान गए नंद महाराज के पास और पूछने लगे बाबा ये क्या कर रहे हो आप, क्या यज्ञ कर रहे हो, किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, इसका परिणाम क्या है, ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, बताओ ना। नंद महाराज बोले क्या बच्चे को क्या समझेगा, सब कुछ बोले नहीं चुपचाप रह गए। तो भगवान कृष्ण बोले देखो संत महात्माओं को किसी चीज को छुपाना नहीं चाहिए, जो अंदर सो बाहर, ठीक है, आप कहोगे संत महात्मा नहीं है, हम तो आपके रिश्तेदार हैं, कम से कम रिश्तेदारों से कुछ चीज छुपाना नहीं चाहिए। जो आदमी सज्जन आदमी है वो किसी चीज को, अरे शत्रुओं से छुपाओ ठीक है, उसका गलत फायदा उठा लेंगे, हाँ अपने बंधुओं से क्या छुपाना, तो कृपया आप बताइए। तो जब भगवान श्री कृष्ण अड़ जाते हैं तो क्या बोलेंगे, नंद महाराज बोले ठीक है बेटा, ऐसा है कि हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बाबा किस लिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं? बोले बेटा ऐसा है, इंद्र हमको बारिश देता है, बारिश के बिना हमारा घास नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगा तो गाय नहीं चरेंगे, हम तो गाय चरा के जीते हैं, और गाय नहीं रहेगी और अगर खाने पीने नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब इंद्र की कृपा से ही हो रहा है, इंद्र दे रहे हैं इसीलिए हम जी रहे हैं। तो कृतज्ञता पूर्वक एक बार तो उनको साल में एक बार यज्ञ करना बहुत जरूरी है, इसीलिए कर रहे हैं। तो भगवान जानते थे कि इंद्र को बहुत अहंकार हो गया है, बार बार होते रहता है इंद्र को, इस बार थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो इंद्र का अहंकार को चूर करना चाहते थे। तो भगवान ने नास्तिकवाद प्रचार करना शुरू कर दिया नंद महाराज को, नास्तिक कर्म मीमांस सिद्धांत बोलने लगे। ये आपने सुना होगा, भगवान ने क्या कहा मालूम है? बाबा भगवान भगवान किसी को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म करो, कर्म करोगे तो फल मिलना ही है। अगर भी भगवान नाम का कोई है, अगर भी देवता है, अगर अपना कर्म करोगे तो भगवान को भी और देवता को भी उसका फल देना अनिवार्य है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं दे सकता, अपना कर्म ही पूजा। तुम्ही आहो तुमचा जीवनाचा शिल्पकार, आप ही हो अपने जीवन के शिल्पकार, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको, फल देने वाला देना ही पड़ेगा उसको, कर्म करो क्यों नहीं देता है देखते हैं, सुना है ना यार? अब हंस रहे हो इसका मतलब बहुत बार सुना है। पर ये बताइए, दस लोग या दो भाई एक साथ जुड़वे भाई एक ही बगल बगल में बिजनेस किए, दोनों गधे के समान कर्म कर रहे हैं, पर एक को सब कुछ मिलता है दूसरे को मिलता नहीं, क्यों? इसके परे कुछ और है जो कर्म देने के लिए नियंत्रण करने वाला है। पर जानबूझ के भगवान एक कर्म मीमांस नास्तिक सिद्धांत कि भगवान नहीं है, अगर है भी तो आप कर्म करोगे तो उनको देना ही है। थोड़ा बहुत उसमें पिछले जन्म अगले जो जन्म है पुनर्जन्म उसका भी थोड़ा बहुत बीच में सिद्धांत डाले, या नास्तिक सांख्य योग के तीन गुणों से बंधकर आदमी तो कर्म करना ही है और उसको पानी क्या बोलते हैं इंद्र को देना ही है। अरे समुद्र क्या यज्ञ करता है? क्या बारिश समुद्र में नहीं गिरता? समुद्र कौन सा यज्ञ करता है? समुद्र में भी तो बारिश गिरता है। अरे इंद्र को देना ही पड़ेगा, आप अपना कर्म करो। और आपका कर्म क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों का कर्म है कृषि करना, गो की रक्षा करना और वाणिज्य करना। वाणिज्य तो हम नहीं करते, खेती तो हम नहीं करते, हम गायों को रखते हैं, जंगल में रहते हैं। तो मैं तो कहूंगा इस गोवर्धन की पूजा करो, इस पहाड़ की पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये हमको घास देता है, ये हमको अच्छा पानी देता है, ये हमको अच्छा फल फूल कंद सब देता है। तो कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति सुनेगा तो कहेगा एकदम नास्तिकवाद है, कर्म करो और किसी पत्थर को पूजा करो। पर भगवान जानबूझकर नास्तिक कर्म मीमांस सिद्धांत और सांख्य नास्तिक सांख्य सिद्धांत बोलने लगे, सिर्फ जानबूझ के इंद्र को भड़काने के लिए, और बोले करो गोवर्धन की पूजा करो। तो नंद महाराज ने बोला बेटा सुनो, अभी हम लोग इंद्र पूजा की तैयारी कर दिए हैं। फिर भगवान ने और एक प्रश्न पूछा,
बाबा ये शास्त्रिक है या लौकिक है या पारंपरिक है? पारंपरिक मतलब परंपरा से आया हुआ नहीं, पारंपरिक मतलब ऐसे ही बस मेरे दादाजी ने शुरू किया, मेरे पिताजी भी कर रहे हैं, इसीलिए हमको भी करना है। क्यों? भला माहिती नहीं, ते केले निपण करतो बस। दुर्भाग्यवश आज हम लोग शास्त्र के नाम पे, आध्यात्मिक चीज के नाम पे ऐसे कुछ भी पूजा शुरू कर दी है। सार्वजनिक गणेशोत्सव अच्छी बात है, कौन से शास्त्र में लिखा है जी? कपिलेश्वर महादेव, कपिल देव जैसा बना के हैट में बैठ दे दिया, मोरेश्वर महादेव विकेट कीपर बना दिए उनको, सचिनेश्वर महादेव उसके हाथ में बॉल दे दिया, सॉरी नॉट महादेव ने, सचिनेश्वर कपिलेश्वर, कुछ भी नाम देके, कुछ भी रूप देके, कभी गरुड़ में बता दिए, कभी मोरपंख लगा के मुरली हाथ में दे दिए, कभी चतुर्भुज बना दिए, अष्टभुज बना दिए, कुछ भी बना दिए। कौन से शास्त्र में लिखा है? यम शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। किसी एक राजनीतिक ने कुछ उद्देश्य के कारण उसने प्रथा शुरू कर दी और उसको हम लोग करते आ रहे हैं, न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, उसे सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, परम गति तो दूर की बात। तो शास्त्र के अनुसार कुछ हमको करना चाहिए। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्रों के अनुसार। तो भगवान ने पूछा शास्त्रों में है या पॉपुलर सेरेमनी है, मतलब सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया? नंद महाराज बोले देखो भाई ये तो अपने परंपरा ऐसे शुरू हो गया हमारे परिवार में, क्योंकि इंद्र हम सब करते हैं इसको, हम प्रसन्न कर रहे दास। तो भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं गोवर्धन की पूजा करो। नंद महाराज ने बोला ठीक है बेटा, ये पहले मैं इंद्र यज्ञ कर लेंगे, उसके बाद तू जो बोलोगे करे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बहुत अर्जेंट है, अभी करो इसको, इंद्र के लिए, इंद्र यज्ञ के लिए जितने सारे तुमने व्यवस्था की है उस सारे सामग्रियों को ले लो और गोवर्धन को की पूजा करो। और जब भगवान कुछ कहते हैं तो ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को भी अप्रसन्न करना पड़े तो उनको कोई चिंता नहीं। तो बोले कुछ भी होने दो, कृष्ण कह रहे हैं, बोले ठीक है हम करेंगे। तो उन्होंने पूछा कैसे करना है बताओ आप, तो भगवान ने बताया, बोले ये जितना सामग्री है सबसे पहले अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, लड्डू बनाओ, पेड़ा बनाओ, दूध के सारे अलग बहुत आइटम खूब बनाओ, राइस बनाओ, पकोड़ा बनाओ, पूरी बनाओ, हलवा बनाओ, बोले जो कुछ होगा अच्छा अच्छा बनाओ, दूध से सारे सामग्री बनाओ, खाद्य फर्स्ट क्लास पकवान बनाओ, भर भर के हंडी भर भर के दाल वाली सब्जी सब बनाओ। और बनाने के बाद ब्राह्मणों को बुलाओ, सही ब्राह्मण, 50 पैसे के ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण ने हिताय चा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो शुद्ध हैं, शवो दमः तमः शौचम शांतिरार्थम एव च ज्ञान विज्ञान वास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको यज्ञ करने दो, उसके बाद मंत्र उच्चारण करने दो, उनको अच्छी तरह से खिलाओ, फिर उनको प्रसन्न करो, फिर गायों को ले आओ, गायों को घास खिलाओ, गायों को अच्छी तरह से प्रसन्न करो, उसके बाद जितने सारे लोग हैं कोई भी लोग चांडाल लोग सबको बुलाओ, सबको खाना खिलाओ, सबको प्रसन्न करो, फिर न केवल गाय, कुत्ते बिल्ली जितने लोग हैं ऐसे पशुओं को भी ला, उनको भी खाना खिलाओ, भर पेट सबको खुश करो। भगवान के लिए सब समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, पर खास गो ब्राह्मण्य हितायच, क्योंकि गो और ब्राह्मण के द्वारा भगवान की भक्ति में प्रगति करने में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, इसीलिए वो खास प्रिय है भगवान, वो डायरेक्टली हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं, दूसरे लोग इनडायरेक्टली लगाते हैं पर ये डायरेक्टली लगाते हैं। तो इस तरह से सबको प्रसन्न करो,
सबको खिला पिला के प्रसन्न करने के बाद, उनको दान देके खुश करने के बाद, फिर अच्छे से अपने आप सज धज के तैयार हो जाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, अलंकार सु अच्छा से अलंकृत होकर गायों को और बछड़ों को सामने रखो और इस गोवर्धन की परिक्रमा करो। उस प्रथा में चलते हुए 5000 साल से आज भी गोवर्धन पूजा के दौरान ब्रजवासी लोग सज धज कर अच्छे तरह से गाय और बछड़ों को सामने रखते हुए हजारों हजारों कई लाखों भी हो जाते हैं परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पूजा के दिन। भगवान के 5000 साल पहले बनाई हुई, भगवान ने धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, उन्होंने बताया तो हम करते हैं। और बोले इस तरह से और गोवर्धन को भोग लगाओ, और जो ब्रजवासी गोवर्धन की इस दिन पूजा नहीं करेगा, गोवर्धन में बड़े बड़े सांप है, वो आके काट के खत्म कर देंगे उनको। बोले जरूर गोवर्धन की पूजा करो। और उस समय से आज तक ये गोवर्धन पूजा चली आ रही है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, 3-4 भक्तों की कृपा से, कृष्ण के भक्तों की कृपा से, उन्होंने आज गोवर्धन यहां प्रकट कर दिया है। हमारे विशाल प्रभु दिन रात गोवर्धन की तैयारी, विशाल गोवर्धन बनाने में विशाल प्रभु का बड़ा हाथ रहा है। हाँ, फिर सिद्धेश्वर प्रभु ने अपनी सिद्धि से उसको एक स्वरूप दे दिया, और भिकाजी प्रभु ने उसका स्पेशल इफेक्ट दिलाया है, और आदित्य कथुरिया, आदित्य प्रभु अपने सुरेश कथुरिया जी के जो लड़के हैं, उन्होंने इंद्र को इंद्र की प्रसन्नता के लिए थोड़ा स्पेशल इफेक्ट भी दिया है। तो आज के दर्शन वेरी वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल है। आज का दर्शन जो मिस किया वो 5000 साल का फ्लैशबैक मिस किया। तो इन 4-5 और भी ऑफकोर्स बहुत सारे, मैं दयासार प्रभु घिस घिस के साफ किए, नहीं तो गोवर्धन का जो प्रसाद है सबको वैसे भी मिल जाता था। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया है ये गोवर्धन दर्शन आपको 5000 साल पहले टाइम मशीन के द्वारा ले जाके आपको वृंदावन में प्रवेश देंगे। तो आज भी वृंदावन में ये परिक्रमा करते हैं भगवान के नियम, मतलब बनाए हुए इस नियम के अनुसार पालन करते हैं। और इस तरह से भगवान की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, ये तो हमको क्या मालूम था गोवर्धन क्या है, क्या मालूम था भगवान कौन है, पर आज 5000 साल पहले जो भगवान ने आप उनको प्रसन्न करने का जो सरल तरीका बताया, वो प्रभुपाद जी की कृपा से परंपरागत आई हुई हमें भी उपलब्ध है। आप जानो या नहीं जानो, समझो या नहीं समझो, मानो या नहीं मानो, अगर आप 3 परिक्रमा श्रद्धापूर्वक गोवर्धन की आज करोगे, तो वृंदावन में जाके गोवर्धन परिक्रमा करने की जो फल है उस आज यहां आपको मिल जाए। पर सिर्फ परिक्रमा कर दिया हो गया जी हमारा, नहीं, मुख्य चीज है इस लीला के द्वारा हम ये 2 चीज सीखना कि अगर हम कृष्ण को प्रसन्न किए, इंद्र क्रोधित हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया, इंद्र क्रोधित हो गया, कहा मूर्ख ये बालक के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरे को छोड़कर इस पहाड़ की पूजा की है, देखता हूं क्या होता है। संवर्तक बादलों को बुलाया जो पूरे विश्व के संहार करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड के संहार करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे बादलों को बुलाया, बोलो जाओ और इस ब्रजधाम को पूरा नष्ट कर दो। ये वाचाल, ये बालक के कहने पर, छोटे बालक के कहने पर इन लोगों ने मेरी परंपरागत आई हुई ये पूजा को छोड़ दिया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज ये देवता की पूजा हमारे कुल देवता है, छोड़ दिया तो फिर पीछे पड़ जाएंगे वो हाथ धोके, फिर हमारा क्या होगा, हमारे दादा परदादा सब करते आए हैं। भक्तो मितुला कहते हैं लोग, क्या करेंगे, नंद महाराज ने भी यही कहा था, कृष्ण बोले चिंता करो ना, कहा मियाँ हो मियाँ मैं हूं, चिंता मत करो। और यही हुआ, संवर्तक बादल भेजे और ऐसा घनघोर बारिश हुआ। रूपा जी लिखते हैं, भगवत कहता है कि एक एक जो बूंद है खंबे जैसे बारिश हो रहा था। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, नहीं, खंबे जैसे बारिश। और कुछ मिनटों के अंदर पूरा ब्रज धाम जो है पानी ही पानी हो गया। कुछ पेड़ भी नहीं दिख रहे थे, ऊपर नीचे जमीन कुछ नहीं दिख रहा था। थर 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 कांपने लगे सारे ब्रजवासी। हवा बह रहा था, सब ठंडी हो रही थी, तो सब भागे भागे। ब्रजवासियों को एक ही चीज मालूम है, कोई तकलीफ तो एक ही व्यक्ति के पास जाओ, कृष्ण कृष्ण महाभाव। तो कृष्ण के पास गए, बोले को आपके बताया, देखो क्या हो गया। बोले क्या हो गया, देखो क्या हो रहा है। बोले मैंने तुमको बोला था ना गोवर्धन की पूजा करो, चलो गोवर्धन के पास, गोवर्धन तुमको बचाएगा, चलो। और भगवान एक एक सीधा एकदम अपने घर से निकले, नंद महाराज के यहां से निकले और सीधा गए गोवर्धन के पास। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब वहां से वहां गए तो भगवान के लीला शक्ति की चलते हुए एक बूंद भी भगवान के सर पर स्पर्श नहीं हुआ, भगवान के शरीर को स्पर्श नहीं हुआ। एकदम फर्स्ट क्लास उनका जो हेयर स्टाइल वैसे ही रहा, एकदम आराम से गए और बोले गोवर्धन तुमको आश्रय देगा, तुमने मेरे कहने पर गोवर्धन की पूजा की, ये गोवर्धन तुमको आश्रय देगा। और जिस प्रकार एक हाथी एक कमल के फूल को उठा देता है, इस तरह से तालाब से, इस तरह से भगवान ने एकदम बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई प्रयास के, बाएं हाथ की छोटी उंगली से। कभी कभी बंबई में किसी को नीच दिखाना हो तो बोले तू मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल, मतलब बहुत ही इंसल्ट। तू पूरा अपना शक्ति लगा रहा है और मैं बाएं हाथ की छोटी उंगली में खत्म। कोई आदमी अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, बाएं हाथ की छोटी उंगली सबसे दुर्बल उंगली है। दाएं हाथ के तो थोड़ा बहुत शक्ति है, बाएं हाथ में तो कुछ भी नहीं, थोड़ा भी कम। तो बाएं हाथ की छोटी उंगली में जानबूझ के घाव में थोड़ा नमक डालने जैसे, और वो भी क्या, ऐसा नहीं कि वेट लिफ्टर जैसा सांस लिए और ऐसा भी नहीं, हाँ चल आ जा भी जो करना है कर, ऐसे उठाए। और कितना, 7 दिन और 7 रात मुस्कुरा रहे थे। और गोपाल चंपू और बड़े बड़े ग्रंथों में समय की कमी है, 7 दिन और 7 रात में क्या क्या हुआ इसका वर्णन है। सारे ब्रजवासियों को आमंत्रित किया, आ जाओ, गायों को लेके आ जाओ, बछड़ों को लेके आ जाओ। बोले अरे लाखों लाखों लोग हैं, नंद महाराज की तो 9 लाख गाय थी, फिर ब्रजवासियों का कितना, जगह कहां है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगा। बोले कोई चिंता मत करो, गोवर्धन भगवान के स्पर्श से प्रफुल्लित होकर, प्रमोदित होकर ऐसा फैल गया कि पूर्ण रूप से सारे ब्रजवासी बड़े आराम से आकर रह सके। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। लोग कहेंगे महाराज ये सब दंत कर रहा है, ये सब ऐसा कुछ होता है क्या, पहाड़ को उठाए फैल गया, लाखों गाय और ब्रजवासी आए, ये सब दाना नानी की कहानी है, वो टीवी में ठीक है, बच्चों को सुनाओ हमको नहीं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप सोचो तो आपको पता लगेगा। भगवान कृष्ण तो दूर की बात, भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र जो हो गए, ऐसा एक व्यक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भगवान की कृपा को प्राप्त करके उन्होंने बड़े आसानी से अकेले ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का सारा बोझा उठा के रखा है हम लोगों के लिए। उन्होंने एक ऐसा महान घर बनाया है जिसके अंदर पूरा विश्व आकर आश्रय ले सकता है। ये तो कोल्हापुर का एक छोटा सेंटर है, अभी तक असली मंदिर नहीं बना है हमारा, बनने वाला है। आप सब प्रार्थना करो गोवर्धन जैसा। आज के दिन जो भी प्रार्थना करेंगे जल्दी पूर्ण होगा। ये एक छोटे से मंदिर के नीचे कितने 350 लोग 250 लोग आश्रय ले रहे हैं, और आज के दिन पूरे विश्व में 450 से ज्यादा बड़ा बड़ा सेंटर गोवर्धन पूजा मना रहा है, जहां हजारों हजारों लोग, और वृंदावन में और कितने सारे लोग, जहां हजारों हजारों लोग भगवान के लीला के द्वारा, श्रवण के द्वारा, इस भौतिक संसार जो है वो ऐसे मूसलधार बारिश है, लोग उसमें तड़प रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, डर के मारे, तकलीफ से, पर जब वो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, जो प्रभुपाद ने अकेला इकलौता आदमी 70 साल का बूढ़ा, 70 से 80 साल 10 साल के अंदर उन्होंने जो चीज उठाया, 30 साल 35 साल के बाद आज भी उस गोवर्धन के आश्रय में हम लोग भगवान के आश्रय को प्राप्त कर रहे हैं। संसार दावान ललित लोक का, इस संसार से आकर कम से कम एक आश्रय पा रहे हैं। तो अगर यह सत्य हो सकता है कि भगवान की कृपा से उनका एक भक्त बूढ़ा व्यक्ति, उनकी कृपा से एक ऐसा संस्था का निर्माण किया जो उनके जाने के बावजूद भी 35 साल बाद आज भी लोगों को आश्रय दे रहा है, हजारों लोग, और खुला है, जितना लोग आ सकते हैं आओ, और भी जगह है, यहां भी जगह है, पर लोग नहीं आते, क्या करेंगे, ये उनकी दुर्भाग्य है। भगवान ने गोवर्धन उठा दिया, बोले आ जाओ, जिसको आना आ जाओ, और गोवर्धन इतना महान है कि वो बढ़ता रहेगा, जितने लोग आएंगे उतने बढ़ेगा ये, और ये प्रभुपाद जी का गारंटी है, उसकी कमी नहीं है। सिर्फ आप प्रचार करो, आप लोगों को बुलाओ, जैसे जैसे लोग आएंगे ये बढ़ता जाएगा, ये टेरेस ऐसा बढ़ेगा, उधर बढ़ेगा, ऊंचा बढ़ेगा, फर्स्ट फ्लोर आएगा, सेकंड फ्लोर आएगा, आश्रय मिलेगा, चिंता मत करो, सिर्फ आप बुलाओ लोगों को, कन्विंस करो आश्रय लेने के लिए, वो गोवर्धन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बढ़ते रहेगा, कैसा बढ़ेगा भगवान जाने, पर बढ़ेगा। तो ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई 5000 साल पहले घटी नाना नानी की कहानी नहीं है, पर हमको जिस प्रकार ब्रजवासियों ने दूसरा कोई आश्रय को निराश्रय करते हुए त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का आश्रय लिया, इस भावना से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां भी रहूंगा पर यहां थोड़ा धसने लगा तो उधर जाऊंगा मैं, नहीं, सब कुछ छोड़ दे, बोले जो होना होने दो, मैं पूर्ण रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। अगर ये भावना से आएंगे निश्चय गोवर्धन जो है वो आश्रय देगा। ये हम देख सकते हैं आज भी 5000 साल बाद भी ये कथा जो है ये कोई मामूली कथा नहीं है, कृष्ण लीला जो है वो नित्य लीला है, उनकी कृपा से जो कृपा का पात्र है वो इसे अनुभव कर सकता है अपने जीवन में, आज इस चीज का अनुभव कर सकता है, भगवान का आश्रय पा सकता है, और 7 दिन और 7 रात तक न ब्रजवासियों को न भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद आई, न कुछ भी तकलीफ हुआ, न बारिश का एक बूंद उनको स्पर्श कर पाया, बल्कि वो कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए पूर्ण रूप से उनको सांत्वना मिली, शांति मिली, तृप्ति मिली, आनंद मिला। और हम भी जो इस भावना से, सही ब्रजवासियों की भावना से, दूसरे सारे आश्रय को त्याग कर जो अंततः आपको निराश्रय करने वाले, अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय, उनके भक्तों के द्वारा आज भी उठाए हुए इस गोवर्धन का आश्रय, और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मतलब क्या, एक ऐसा फैसिलिटी सौलभ्य जहां आज भी कृष्ण का आश्रय है, भक्तों के संग के रूप में, प्रसाद के रूप में, कृष्ण कथा के रूप में, कृष्ण के संकीर्तन नाम के रूप में। और जो उस व्यक्ति जो व्यक्ति इन चीजों का आश्रय लेगा, निश्चित रूप से पूरे संसार की जो तकलीफ है उसमें से मुक्त होकर बड़े आसानी से पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य आदान प्रदान का जो आनंद है उसकी अनुभूति होगी उसको। और तब इंद्र समझ गए, 7 दिन 7 रात तक अपनी पूरी शक्ति से बारिश कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि बगल में से कोई पानी भी नहीं आया अंदर। बंबई में ऐसा हुआ था, थोड़े दिन पहले बारिश आ गई, बस डूब गए, घर से पीछे से खिड़की से पानी आ गया, इधर से आ गया, अंदर से तो बढ़ते बढ़ते जा रहा था। कोई पूछ सकता है इतना पानी हो गया तो अंदर से तो आया होगा, साइड में से। भगवान का सुदर्शन, अलग अलग आचार्य अलग अलग तात्पर्य देते हैं, कहते हैं ऐसा सुदर्शन चल रहा था कि जैसे कभी आप आग में थोड़ा पानी डालो, बोले जितना भी पानी आता था सुदर्शन के आग से सब जल के एकदम बाष्प बन जाता। यहां तक कि गोवर्धन के ऊपर गाय बछड़े और यहां तक कि गोवर्धन के ऊपर जो पेड़ थे उस पेड़ के ऊपर का एक पत्ता भी नहीं झड़ा। मतलब इंद्र को अपमान करना है तो भगवान ने ऐसा किया कि जिंदगी भर ना भूले। बोले तो कुछ भी नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता, एक पेड़ का डाल नहीं तोड़ सकता, डाल को दूर एक पत्ता भी नहीं गिरा सकता। इंद्र समझ गया कि कहीं तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर बैठा हूं, अहंकार के कारण मैं कुछ और समझ बैठा, मेरे प्रभु पर ही सूरज को मैं मोमबत्ती दिखा रहा था, योगेश्वर को मैं अपना योग शक्ति दिखा रहा था। और तब कैसा आए उसको इतना इतना मतलब वो लज्जित हो गया कि वो बोला मैं कैसे भी भगवान के सामने जाऊं, तो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने बोला तू जो अभी गलत काम किया है मैं कुछ नहीं कर सकता, एक काम कर। भगवान के प्रति जब अपराध हो गया एक ही तरीका है, भक्तों को सामने रख के हमारा रिकमेंडेशन कराओ। वो जब भक्त रिकमेंडेशन करता है भगवान थोड़ा उल्टा सीधा काम कर दे, माफ कर दो इसको, ले लो अंदर ले, अपने आदमी अच्छा आदमी। तो भगवान के प्रति अगर अपराध हो गया ना तो कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो मतलब करो मत, पर बाय चांस हो गया कोई चिंता नहीं, भक्तों को सामने रख के पीछे खड़े हो जाओ और भक्तों को बोला आप रिकमेंडेशन करो हमारा। और भक्त कहता है कि प्रभु थोड़ा बेचारा गड़बड़ी हो गया, माफ कर दो इसको। तो ना नहीं कह सकते भगवान। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक ही काम है, भगवान को प्रसन्न, तुमने गायों को तकलीफ दिया है, अब एक गाय को सामने रखो, क्योंकि भगवान गो ब्राह्मण ने हिताया था, गाय के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, तो एक गाय को सामने रखो। सुरभि गाय बोलो वृंदावन से आई, और उस गाय को सामने रख के, सुरभि गाय को सामने रख के इंद्र पीछे पीछे मुंह छुपा के आया, रिकमेंडेशन करा। फिर वो सुरभि माता सुरभि आई और कहने लगी प्रभु मूर्ख बालक है माफ कर दो इसको। कहा इंद्र देवेंद्र चुपचाप खड़े हुए, फिर सीधा एकदम जाके एकदम दंडवत प्रणाम किया भगवान के चरणों, 7 साल की उम्र के बालक प्रणाम किया। और एक पूरा अध्याय दशम स्कंद भागवतम के दशम स्कंद का 24, 25, 26 और 27 चार अध्याय इस गोवर्धन लीला के लिए। देखिए आप भागवत महान ग्रंथ है और भागवत ग्रंथ में जो दशम स्कंद है वो तो मुखारविंद है भगवान के, और उसमें 4 अध्याय गोवर्धन लीला के लिए वर्णन की गई, और उसमें एक पूरा अध्याय है किस प्रकार सुरभि को सामने रखते हुए इंद्र ने सुंदर सुंदर हृदय पूर्वक आए हुए प्रार्थना से भगवान को भगवान से माफी मांगी और उनसे आशीर्वाद किया कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सेवा में लगे रहूं। तो भगवान ने स्वीकार की और सुरभि ने अपने दूध के द्वारा, दिव्य दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। आज भी गोवर्धन के बगल में गोविंद कुंड है, ये गोविंद कुंड जो है सुरभि के दूध से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद इंद्र ने अपने ऐरावत से गंगा जी का पानी लाया, दिव्य देवताओं के इस मतलब वहां से पानी लाए और उसका भगवान का अभिषेक किया और तब भगवान का नाम गोविंद, गोविंद कुंड, इसीलिए आज वो गोवर्धन के बगल में जो गोविंद कुंड है वो कुंड जो है इसके द्वारा निर्माण हुआ। जब सुरभि ने अपने दूध के द्वारा और इंद्र ने गंगा जी के मतलब ऐरावत के सून से जो आकाश गंगा है वहां से उसको स्नान करा, उनका अभिषेक करा, तो इस तरह से भगवान तृप्त हुए उनसे और प्रसन्न हुए। और सुरभि ने कहा कि आज से आप हमारे असली इंद्र हो, आप ही असली इंद्र हो। तो इस तरह से इंद्र का जो अभिमान था उसका नष्ट किया। भगवान ने यह दिखाया कि कैसे हम उनका आश्रय ले सकते हैं, उनका आश्रय लिया तो और किसी की आश्रय लेने की जरूरत नहीं। और भक्तों की सेवा से, भक्तों को प्रसन्न कर, गोवर्धन पूजा मतलब गोवर्धन के पूजा के द्वारा हम भगवान के भक्तों को की सेवा कर रहे हैं जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा ये गोवर्धन पूजा क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका फल क्या है, ये हमको समझ में आ रहा है। और जिस हद तक ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और तीव्रता पूर्वक अगर हम इस दिन गोवर्धन से प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा से आज वो प्रकट होगी हमारे सामने, और जब प्रदक्षिणा करेंगे तो ये प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार गोवर्धन भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने में बहुत ही निपुण है, हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान की कि हमें वो बुद्धि दो, हमें वो शक्ति दो कि न केवल आपको बल्कि आपके प्रामाणिक भक्तों को हम प्रसन्न कर सके, उनको तृप्त कर सके, उनको आनंद दे सके। क्योंकि जब उनको प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की, श्री गोवर्धन की, गिरिराज महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे।